अब यहां से हम अगला तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो बहुत अहम है, और वो क्या है, यानी कर्ज तो ले लिया आपने, आप उसको अदा भी तो करें। और रियली मैंने जो चीज़ फी है ना, आज हम मुसलमानों में, और स्पेशली फिर कहूंगी हमारे दबे हुए मुल्क पाकिस्तान और इंडिया, और इसी तरह के और भी बांग्लादेश और भी कुछ ऐसे गरीब मुल्क होंगे कि जहां लॉ एंड ऑर्डर इतना नहीं है, बिजनेस के लिए लोग कर्ज लेन देन देते हैं, यानी किसी से माल ले लिया, पैसे बाद में देंगे, या किसी का घर किराए पे लिया, किराया देना है। एक दफा आपको किसी आपने किसी को दे दिया कर्ज, आपके पास भी था, आपने कहा ये मैंने हज के लिए जमा किया, मैं ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2 माह के लिए ये कर्ज दे दे, मैं आपका वापस कर दूंगा, तो आप कहते हैं 2 माह मेरे पड़े रहेंगे, इनको दे दूं। आपने उधर अपनी अपनी हज की एप्लीकेशन दे दी कि पैसे तो बाद में जमा कराने होंगे, पता चला 2 माह क्या हो गया, 6 माह गुजर गया, वो दे ही नहीं। ये आम है हमारे मुल्कों में। अब आप क्या करें, यानी इस वक्त अगर आप ये टॉपिक जो मैं पढ़ रही हूँ पाकिस्तान इंडिया के नाते से सुन रहे हैं, तो मुझे जिस पे ज्यादा बात करनी चाहिए वो क्या है कि जब आप कर्ज लें तो दें, वापस करें। ये तो आज भी इस अहले मुखय्यर हजरात को बहुत पता है, कर्ज देने का अजर सवाब जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ के अब आपका भी दिल बहुत चाह रहा है कि हम कर्ज लोगों को दें, हमारे पास इतनी आसूदगी हो हम दे दें, ठीक है। लेकिन ये श्योरिटी कि जब आप कर्ज दे रहे हैं किसी को तो बवक्त जरूरत आपको वापस मिले, पीछे भी बात हुई थी ये मनी मैटर्स आपस के मामले हैं, क्यामत के दिन आपको पता है कुछ लोग 2-2 दिरहम की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, वल्लाही 2 दिरहम का लेन देन बराबर नहीं किया जहन्नुम में जाएंगे लोग, इतना जबरदस्त इशू है। तो कभी किसी से लव है किसी मद में भी तो आप उनसे बात कीजिए, या वापस करें या माफ कराएं, जबरदस्ती माफ ना ना। जो माल दूसरे मुसलमान भाई का बहन का उसकी तीबे नफ्स के बगैर खाया, तीबे नफ्स होते दिल की खुशी से, वो हराम है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, जैसे मसला कोई आपको इनवाइट करता है मेरे घर खाने पे आइए, अब वो खाने पे बुलाता है खुशी से, वो दाल पकाए, साग पकाए, चावल पकाए, आपके लिए चिकन पकाए, आपके लिए हलाल है, वाय उसने आपको बुलाया। और एक हमारे यहाँ, एक मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ, अरे जी पार्टी कब दे रहे, आप मैट्रिक में फर्स्ट आए जी, बेटे की मंगनी होगी पार्टी कब दे रहे, ये जो पार्टी लफ सुना हुआ ना, अब अगले ने मुरव्वत से दी, ये आपके लिए चीज नहीं है, कहकर पार्टी मांगना ये भीख मांगना है। मैं आपसे कहूँ कब बुला रही हैं शाहीन आप अपने घर, आप तो हमें बुलाती नहीं, अब शाहीन क्या कहेंगी, सासा ने कह दिया, अच्छा फिर जो मर्जी अब मुझे इनको बुलाना पड़ेगा, तो मेरे लिए ये अलाउड नहीं है। अगर तो ये अच्छी इतनी है कि अपने दिल की खुशी बना ले मेरी बात को, तो ये मैंने मायूब बात तो की इनसे, लेकिन इन्होंने मुझे गुनाहगार बचा लिया कि मैं खुशी से पकाती हूँ। और हमारी अक्सर दावतें औरतें जो खासतौर पर दुख दुख से पका रही होती हैं, मियाँ ने मेहमानों को बुला लिया, इट्स नॉट गुड वे, जिसमें दूसरे बंदे को मजबूरन कुछ करना पड़ा। और आप मेरे इस कहे हुए जुमले को लिखें और फिर जरा आज अपनी शादियों की दावतें, शायद बरात के खाने, वलीमे के 1000 बंदे का खाना नोट करके देखें, कितनों का हम नजायज खा के आते हैं, सिर्फ रस्मन लोग बुलाते हैं, मुरवतन बुलाते हैं, इतनों का ना मिसाल है कितनी बारात ला रहे हैं। आप मुझे सच बताएं कि एक गरीब सफेद टीचर है, उसकी बेटी की शादी है, जिसने सारी जिंदगी रिज़्क हलाल कमाया, लड़के वाले कहते जी बस 200 लोग आएंगे हमारे साथ बारात में, क्या ये 200 की बारात वो तीबे नफ से खिलाते हैं, वो तो हिसाब लगाएंगे एक बंदे का 4-5 हज़ार रुपया है खर्चा, तो 4-5 हज़ार ये वो, अल्लाह अकबर, तो कई लाख बनता, करें चुप कर जो खिला दो। कई लोग कहते हैं जी हमें लेन देन ना करें, करें हमारी बरात को बड़ा अच्छा खाना खिलाएं, ये तीबे नफ्स नहीं है। तो हमेशा याद रखिए क़यामत के दिन, मुझे तो लगता है जो जौमुत तगाबुन, ये आप मजमून सूरह तगाबुन में भी पढ़ेंगे, मेरे तो हाथ ठंडे हो गए थे जब पहली दफा मैंने उस यौमुत तगाबुन का मतलब समझा था। क़यामत के दिन बड़े बड़े गबन होंगे, आप किसी को बहुत अमीन समझ रहे हैं तो वो आपको मुजरमों को कटहरे में दिखेगा, किसी को आप दुनिया में बड़ा साहूकार समझ रहे थे, पता चला जेल की कोठरियों में जा रहे, क्यों कि 2-4 रुपए का, 2-4 डॉलर का लेन देन था। सुरो मुतफ़िफ़ीन का मेरा हाल 2-4 किलो वजन कम कर देती है कि इतना सही इतफाफ, किलो में से एक छटांग भी किसी की चुरा ली पकड़े जाओगे। तो ये वो पुल सरात है जो दुनिया की, एक जुमला बोलूंगी शऊर लिखिएगा, आखरत का पुल सरात तो जहन्नुम पे पड़ेगा ना, जानते हैं ना जहन्नुम रास्ते में जो कुछ भी मामला है, आखरत का पुल सरात जहन्नुम से गुजरता है, दुनिया का पुल सरात इंसानी मामलात से गुजरता है। ये रिश्तेदारियां, ये मामले, माली मामले, ये दुनिया की पुल सरात है। हदीस का खुलासा है कि अल्लाह अपने मामले में बड़ी नरमी करेगा क़यामत के दिन, इंसानों के मामलों में बड़ी सख्ती करेगा, इसलिए करना कराना है दुनिया में कर लें। हमारे प्यारे नबी ने इतनी दफा लोगों को इस बात की रगबत दी, लोगों जो मेरे से लेना ले लो, लोगों जो मैंने देना है मुझसे मांग लो, क़यामत के दिन ना आना। एक मौके पे अल्लाह के नबी ने ये बात की, जिसका मैंने दिल दुखाया हो, जिसको कुछ कहा हो, मुझे अभी कह दो ताकि कल क़यामत के दिन ना पकड़ो। तो एक साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी सल्लम, ग़ज़वे बदर के मौके पे जब आप सफ़े सीधी कर रहे थे तो आपकी तलवार थी या जो तीर था आपके हाथ में, उसकी नोक मेरे पेट पे लग गई थी, तो ये आपने मुझे तकलीफ़ दी, मेरे से बदला ले लो। साहबा देख रहे हैं ये शख्स क्या कह रहा है, इतनी इसको समझ नहीं कि अल्लाह के नबी कैसे कह रहा है। कहा मैं तो बदला लूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा हो भाई, आप आगे कहने लगे जैसे मैंने तुम्हें चुभोई थी तुम चुप बोलो। कहा नहीं अल्लाह के नबी, मेरे बदन पे सोकर कपड़ा नहीं था, क्या मतलब आप भी कपड़ा उतारें। साहबा को और भी बुरा लग रहा है कि ये बंदा कर क्या रहा है, इसको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपने कहा नहीं आज ले लो, वहां जा लेना। देखिए नबी जो तड़पते रहे, रोते रहे, लोगों के लिए जलते कुड़ते रहे, वो ये कह रहे हैं। और फिर ऐसे ही हुआ, अल्लाह के नबी ने कपड़ा उतारा और उस शख्स ने जहां भी इशारा किया था वहां जाके अपने लबों को रख दिया। क्यों? कहने लगा कि ये सब मैंने इसलिए किया कि मेरे होंठ आपके बदन को चूम लें ताकि इन पे जहन्नम हरा जाए। अब एक नबी को ये एहसास है, आज मैं और हो गया कर लिया कर लिया, अच्छा माफी हो नहीं, क्लियर कट बात करें माफ है कि नहीं है, दिल से कर रही हो, मजबूरी में कर रही हो, और आपस जितना जिसे आपका करीबी रिश्ता होता है उतना ज्यादा फंसा जाता है। बात दफा मर्दों की कमाई है, अगर आप मर्दों की कमाई उनकी मर्जी के बगैर चोरी छुपे इधर उधर करें, वो चाहें तो कल पकड़ सकते हैं। फिर ऐसे लोगों को दिल बड़ा कर लेना चाहिए। मुझे समझ आ गई कि बाद कोई इज्तिमाई काम हो रहा है, खानदान है, कुछ कहते हैं करेंगे, कुछ कहते नहीं। हाँ जी, तो फिर उस वक्त वैसे तो ये पसंदीदा अदब नहीं है, अखलाक नहीं है ऐसा, ठीक है। भूख लगी है ना तो मैं आपसे कह सकती हूँ आपके पास कोई रोटी है तो मुझे दे दें, मुझे भूख लगी, इट्स फाइन। साहबा इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे कि भूख की वजह से निकलते थे, अल्लाह के नबी भी जाते थे, मुरब्बत से भी रहते थे, लेकिन कभी जरूरत पड़ती तो पूछ भी लेते घर में कुछ खाने को, फाइन। लेकिन ये जो इज्तमाही मामला है किसी मस्जिद में, कुछ लोग कहते हैं पॉटलक कर लेते हैं, कोई कहते नहीं करते, कोई कहते हैं $100 जमा करते हैं, कोई नहीं कहता, तो अव्वल अगर तो ऐसे मामला में कोई फितने का डर नहीं है तो फिर वो मेजोरिटी या जो लोग कर सकते हैं उसमें ये चॉइस कर देनी चाहिए कि जिसकी जो सहूलत है वो इस तरह कर ले और हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल फर्जे मुहाल आपको देने पड़े और आपका दिल नहीं मारा तो फिर दिल को मनवा लीजिए, दूसरों को ना पकड़े। देखिए इतनी खूबसूरत मैंने कल की बात पढ़ी हुई है, मैंने आपको भी शायद भेजी थी रात को, कि जिसने सोचने पे मजबूर किया, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत तकलीफ दे टॉपिक है। मैं इसको पढ़ाने से पहले कई दफ़ा सोचती हूँ कि अल्लाह ताला मैं इसका हक अदा करूँ और मैं आपका ऐसी झूठी मोटी लोरियाँ ना दे के चली जाऊँ, क्योंकि इंसानों के मामला जो हैं ये बहुत शदीद मामला होते हैं। तो ये माफ़ी की बात है कि जब इंसानों के अंदर ज़ाहिर बाज़ दफ़ा माली मामला में कुछ कमी बेशी होती है, बाज़ दफ़ा कुछ और मामलों में भी होती है। तो ये किसी के ऐसे ही एक अपने से बातें थी। बहुत से लोगों ने मेरी जिंदगी को बहुत सी आजमाइशों से दो चार किया, कभी होगा जिंदगी में लोगों की वजह से आपको दुख मिलते हैं, लेकिन इनके गुजर जाने के बाद मैंने इन सब को माफ कर दिया। आजमाइशें तो इम्तिहान थी, आई और गुजर गई, मगर सजा और जर है, यानी ये तो हकीकत है, वो नहीं टलती। और ये सोचकर कि किसी को मेरी वजह से ना खत्म होने वाले अजाब से गुजरना पड़ेगा, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि माफी मुझे भी बहुत से लोगों से चाहिए, माफ कर दें ताकि माफ किए जा सके। बात समझे? इसलिए हम नहीं जानते कौन है, तो कभी किसी के लिए दिल में ना रखें हमेशा के। मुझे अपने खानदान के एक बुजुर्ग याद आती हैं, बिस्तर पर रात को जाती थी ना तो कहती थी फलां फलां का नाम ले, भाई मैंने तुम सबको माफ कर दिया, तुम भी मुझे माफ कर देना, पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं उठना। ये उनके टिपिकल जुमले थे रात को सोने से पहले। क्या? और वाकई दिल बड़ा रखें, अपना दिल तो बड़ा रखें। आप तो दिल से भी से कह दें मैंने उसको भी माफ किया, उसको भी किया, और उसको बता भी देना चाहिए। इसमें आगे हमें इंशाल्लाह काफी इसमें टिप्स मिलेंगी कि जिनको हमने लिया दिया हुआ उनके साथ कैसे डील करें। तो आइए देखते हैं, ये तीसरी बहस है इस टॉपिक की, अदायगी कर्ज की तलकीन, थोड़ी सी इसकी तमहीद। इस्लाम में कर्ज देने की पुरजोर तरगीब, तरगीब का मानी क्या होता है? रगबत। और मकरूज के साथ हुस्न मामला की शदीद तलकीन के पहलू ब पहलू कर्ज की अदायगी के मौजू पर भी तवज्जो दी गई। यानी एक तरफ तो यह कि जो कर्ज दे रहा है वो दे, इस्लाम ये भी बैलेंस सिखाता है, लेकिन ये नहीं कहा कि बस तुम देते ही जाओ। इस्लाम सिर्फ गरीबों का इस्लाम नहीं है, अमीरों का भी है। क्या अमीर तुम्हें दे रहे हैं तो साथ ही साथ फिर कर्ज को अदा भी करो, इसके ऊपर भी बहुत तवज्जो दी गई। इस बारे में अब हम इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पांच डिफरेंट सब टाइटल्स के साथ बात करेंगे। पहला टाइटल क्या है इसको हाईलाइट कीजिए, अदायगी कर्ज का हुक्म, फिर अदायगी कर्ज के फजाइल, फिर अदायगी कर्ज के लिए कबल अज़ वक्त तैयारी और अदायगी कर्ज करवाने वाली दुआओं की तालीम और फिर पांचवा कर्ज दम अदायगी से अखलाकी तौर पर रुकना। मैं अपने लफ्ज़ों में खुलासा करती हूँ, अगर आपने मैंने कभी किसी से कोई कर्ज लिया है, ठीक है, अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर लिया तो हमें देखना है कि अब इस कर्ज़ को अदा करने का क्या हुक्म है, इसको अदा करना चाहते हैं और करेंगे तो फजीलत क्या है। यानी जिस तरह कर्ज देना जर है ना, ये बड़ा अहम नुकता है, इसको अलग से जुमला लिख लें। इसके साइड पे ये जो खाली जगह है ना, इधर बुक के साइड पे मैं ऐसे करती हूँ, आप देखिए स्क्रीन की तरफ, ये जो खाली जगह होती है ना, मैं इनको कैसे यूज़ करती हूँ, साइड नोट्स, जैसे ब्लू पेन रख लें पास, पर्पल रख लें, रेड रख लें, तो ऐसे टेढ़ा करके, जब कभी लोग ऑटोग्राफ देते थे फिर उसके इर्द गिर्द ऐसे स्टार डाल दें, यानी इंपॉर्टेंट थिंग कर दें, तो इंशाल्लाह ये बुक बन जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह इस्लाम कर्ज देने की रग़बत दिलाता है ना, इस तरह कर्ज की अदायगी की भी रग़बत दिलाता है। फिर जब कर्ज़ की अदायगी करनी है तो पहले से तैयारी कीजिए, ये बड़ा अहम है। अब हम लोगों ने स्कूल के लिए जब कोई जगह लेते हैं, अभी भी रिसेंटली नॉर्वे में एक जगह ली है अल्हम्दुलिल्लाह इन साथियों ने, लेकिन अब उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं एक दो छोटी बड़ी करके, तो मैं यहाँ बैठी मेरा दिल हौलता है कि अल्लाह असबाब बना दे तो हो जाए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता आपके दे देंगे बाद में कि कोई ना जो, तो आपको वक्त से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, प्लानिंग्स ऐसी करनी पड़ेंगी ताकि आखिरी दिन ना भागना पड़े, ठीक है। फिर इसी तरह से दुआएं, जब हमारी कोशिशें पूरी ना पड़े तो फिर कौन सी दुआएं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे सीख ही रहे हैं, या इसके अंदर हम कुछ आज और दुआएं भी सीखेंगे। फिर इसी तरह कर्ज की अदम अदायगी, आप कर्ज ले चुके अब दे नहीं रहे, तो इसके लिए अखलाकी तौर पर रोकना। देखिए यहाँ याद रखिएगा, चंद बातें समझ लीजिए, कर्ज इंसानों से भी लिया जाता है और इदारों से भी लिया जाता है, बैंकों से भी आज लोग लेते हैं, कंपनी से भी लोन लेते हैं, जिसका भी आपने देना है, डजंट मैटर ही और शी इज अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, ही इज और शी इज अ लाइक आप कह लीजिए कि राइटियस पर्सन और नॉट, मैं सवसूद की बात कर रही, कर्ज तो कर्ज ही होता है। आपने गवर्नमेंट को कुछ देना है, कोई बिल देना है, किसी जगह आपने कोई चीज ली और उसके पैसे देने हैं। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ कि कुछ अर्सा पहले मुझे किसी ने बताया, यूके की बात है, कोई फैमिली थी तो वहां बहुत साल से रह रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने देखा अंधाधुंध शॉपिंग करते हुए उनको क्रेडिट कार्ड्स पे, कहा कि आप इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, कहने लगे हम यहां से फॉर गुड मूव हो रहे हैं, तो शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, कहती हमने कौन से इधर होने भेजते हैं कर्ज, बात में हंसते रहेंगे ना हम होंगे ना हम पे करेंगे, तो उन्होंने कहा पैसा क्यों करी, कहती ये काफिर हैं इनको जितना मर्जी नुकसान पहुंचाओ। यदि हम ये सोचते हैं कि काफिरों को नुकसान पहुंचाना इस्लाम है, तभी तो बदनाम होते हैं ना फिर हम, अल्लाह के भी ऐसे होते तो फिर तो पता नहीं ये आज जिन लोगों की जुबानों से आप नबी सल्लम की तारीफें सुनते हैं कि वो कामयाब तरीन इंसान थे, वो अल्लाह के नबी कैसे फ्रॉड सुनाते कि देखो ये मक्का से निकले तो ले गए, तो पता है कि अल्लाह के नबी मक्का से गए तो आप पहले अमानते वापस करके गए, और मैं सोचती हूँ कि एक तरफ आपके घर का घिराव किया हुआ है, आपको पकड़ना चाहते हैं, राइट, और आपको इतना सच्चा समझते हैं कि अमानते आपके पास रखी हुई, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है आज की जुबान में, तो किरदार बोलता है, करेक्टर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो लिहाजा किसी को भी देना है माफ करा लीजिए, क्लियर कट कीजिए। आपके अपने इस मुल्क के लॉ में कितने फ्लॉज होंगे आपको पता है, लोगों ने पैसे लिए होते हैं फिर जिससे जो लेना देना है दुनिया में क्लियर कर ले, बता दें हमारे पास नहीं है, बाज लोग कहते हैं करते रहो बाद में बैंकरप्सी फाइल कर देंगे, बैंकरप्सी फाइल कर दी अब वो लेते रहेंगे हमारी कहां से लेंगे, कई लोग तो घर भी इस तरह से मैंने सुना है कि लेते हैं कि बाद में देखेंगे बिजनेस के लिए लोन लिया बाद में बैंकरप्सी शो कर दी भाग जाएंगे, उसका नाम बदल के कोई और नाम से काम शुरू कर देते हैं, वो कंपनी डूब गई है, वल्लाह ही इस्लाम नहीं है, तभी तो फिर हम परेशान हैं, और हमने खुद अपने दीन के नाम पे कलक लगवाई अगर हम मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। तो आइए जरा इसको संजीदगी से सुनते हैं कि कर्ज की अदा करने, कर्ज लिया है आपने किसी, अब आप उसको पे बैक करना चाहते हैं, इस्लाम का क्या हुक्म है। इस्लामी शरीयत में मकरूज के पास कर्ज अमानत, ये बड़ा बड़ा हाईलाइट कर ले लफ्ज अमानत, अमानत होता है कर्ज, जो आपने कर्ज ले लिया है ये ऐसे ही है गोया कि अब आपने किसी की अमानत रख ली अपने पास, जिसको वो मुकर्रर वक्त पर कर्ज ख्वाह को वापस करने का पाबंद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 58 सूरत निसा, इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानते के हकदारों को अदा कर दो। अलामा सय्यूती इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, आयत में अमानत मुदारबत और कर्ज वगैरह के तौर पर ली हुई रकम की वापसी की फर्जियत का सबूत है। तो आप समझते हैं ना, यानी किसी से चीज लेनी, कर्ज भी समझ रहे, मुदारबत क्या होता है, कारोबार, लेन देन, ट्रेडिंग, कभी आप कहते हैं अच्छा माल इतना भेज दो पैसे भेज दूंगा, कभी कहते हैं भाई जरा कोई कंसाइनमेंट रुकी भी, अच्छा पैसा दे दो तुम्हें वापस कर दूंगा, यानी कारोबारी लेन देन में भी जो माल आपने किसी को देना है वो सबूत है इस बात का कि वापस करना चाहिए। इमाम बुखारी ने एक बाब का उन्वान तहरीर किया है, कर्जों की अदायगी के मुतल्लिक बाब, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानत इनके हकदारों को अदा कर दो। हाफिज इब्ने अबी शैबा ने तुल्क बिन माविया से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, एक शख्स के जिम्मे मेरे 300 दिरहम थे, मैं इसका मामला शुरैह के पास ले गया तो उन्होंने इस शख्स से कहा, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुद्दुल अमानात अहलिहा, कि बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अमानते उसके अहल जो लोग हैं उनको, यानी उन्होंने कुरान की आयत से नसीहत की। और ये जो शुरैह है ना, ये कौन थे? शुरैह बिन हारिस जो थे, ये इस्लाम के बहुत मशहूर तरीन काजी हैं। हजरत उमर ने इनको कूफा का काजी मुकर्रर किया था, 60 साल तक ये कूफा के काजी रहे, और हजरत अली ने इन्हें अपने वक्त का अरब का सबसे बड़ा काजी कहा। 78 हिजरी में इनकी वफात हुई। तो लिहाजा भी किसी को नसीहत करनी हो तो कुरान की आयत से नसीहत कीजिए, ठीक है? तो पहली बात समझ आ गई कि किसी किस्म का कर्ज को टैक्स देना है, टैक्स भी तो फिर इसी में आ जाएगा, कोई भी ड्यूज भी कर लीजिए। आज आप देखिए ना, फिर लोग हमसे कहते हैं अच्छा जी ये इंश्योरेंस का क्या हुक्म है, अच्छा जी फलां फुला, कितनी जगह तो फिर लोग चीट करते हैं, खुद अपनी चीजें खराब करके जाके इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम करवाने होते। तो बहरहाल ये एक बिग इशू है, ये इसको छेड़े बगैर हम आगे जा नहीं सकते, लेकिन वी नीड टू डू। मैंने आपको जो शुरू में एक असूल लिखा दिया ना, मालमन इक्तसित, हदीस में आता है कि सिर्फ वही बंदा बचाएगा अपने दीन को जो जंगल में जाके बकरियां चरा ले। क्या मतलब? पांव ना फैलाइए, आपके पास हर चीज हो, कुछ नहीं होता, नहीं होगी, होगी तो कौन से आप इतने खुश हैं। कभी आप ये सोचें कि अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं घर अपना ले लेती हूँ, नो प्रॉब्लम, अल्लाह ने मना नहीं किया, अच्छी बात है, आसूदगी है। अब आप 1 करोड़ का घर लें, मैंने सुना है मारूफ जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, हर एक ने आलमों से अपना अपना घर अपने मुल्कों में बनाया हुआ है। तो मैंने पूछा ऐसी एक दो से कभी बात हुई तो उन्होंने कहा किधर है घर, क्या हो रहा है वहां, कौन रहता? कहते चौकीदार, बस कोट बना दिए ताकि रोब रहे कि बाहर गए हुए ना, तो पैसा भेजा कोठी बना ली, भाई किसी को दे दो अपनों को, कहती नहीं लोग फिर खाली कर देते हैं। फिर करते क्या, हम बस साल में एक दफा जब जाते हैं तो वहां रहते हैं, अपनी कोठी खोलते हैं, हवा लगाते हैं, तो वहां जो काम, कोई कहता है जी वहां फलाम मौज कर रहा है, फिर आपस में लड़ाइयां शुरू होती हैं। अब वो गरीब रिश्तेदार आप ही के अपने भाई बस हो सकता है, किराएदार मालिक मकान उनको धमकियां दे रहा है, अब वो सोचते हैं कि आप सेठ साहब कोठी इधर बनी है, फलां की इधर बनी, क्या ग्रज नहीं आएगा? फिर रिश्तेदारियां खराब होती हैं, फिर वो आपसे उम्मीद लगाते हैं, फिर आप यहाँ बैठे हुए रोते हैं जी आप कमाते हैं मियाँ इधर है, सारा भाइयों को भेज देते हैं। तो बात है, वो कहते हैं ना कि एक बुजुर्ग था किसी गांव में, गरीब था बाबा, सारे वो कहते थे बाबा वेला बाबा वेला, काम कोई नहीं करता, तो बस जहां बैठा बातें की, हुक्का पकड़ा, इधर से उधर चल पड़े। तो एक दिन गवर्नमेंट की तरफ से रेडियो पे खबर आ गई कि जी सैलाब का रुख है इस गांव की तरफ, तो जल्दी से जल्दी अपना जो सामान उठा के ले सकते हैं भाग जाए, महफूज जगह पे पहुंच जाए, रेस्क्यू जगह है वट एवर, तो बस्ती में सैलाब आ जाएगा। अब लोगों में एकदम भगदड़ मच गई, जिनकी चीजें हैं वो उठा रहे हैं, क्या रखे, भागा भागा एक शख्स बच्चा एक बाबा के पास, बाबा बाबा तुमने सुना, जल्दी करो सामान तैयार कर लो, जल्दी करो जल्दी सैलाब आ रहा है। तो अच्छा क्या आ रहा है? सैलाब आ रहा है। तो बाबा खड़ा होकर ना तो अपना वो कपड़ा झाड़ के कहता, अल्लाह आज गरीबी ने मजा दिया है, चल पकड़ हुक्का, चलते भाई किधर जाना, चलते हैं। वल्लाह ही ऐसे बाबेले बहुत सारे क्यामत के दिन हम उन पर रश कर रहे होंगे, जो हैंड फ्री लगेज जोन में से गुजरे होंगे। ये दुनिया बस गुजरी है, तब भी तो फिर हमारे मसले नहीं हल होते। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम ऐसे हैं कि हमने आधा जिसम ठंड में रखा हुआ और आधा गर्मी में, गर्मी सर्दी है ना, ये दुनिया और आखिरत दोनों एक जगह चल ही नहीं सकती। इसके लिए आपको फकीर मिजाज होना ही पड़ेगा, और वल्लाह ही फकीर मिजाज होने का ये नहीं मतलब कि अल्लाह आपको फकीर कर देता है, आप दूसरों से अच्छा खाते पहनते हैं लेकिन आपका मिजाज फकीराना होता है, आपको तलब नहीं होती, और जब इन चीजों की तलब खत्म करेंगे ना तब आएंगी। मैं पिछले ऐसे अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, मुझे ज्यादा ब्रांड्स के नाम नहीं आते, लोगों से सुने होते हैं इधर उधर से जो होते हैं, एक ब्रांड की मिसालों में बड़ी दफा मिसाल दी हुई है, मैं नाम नहीं लूंगी आपके साथ, तो ऐसे दी, मुझे कोई किसर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हाथ में $10 का पर्स है या 100 का, वल्ला ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पड़ता होगा तो। तो ये रिसेंटली पिछले दफा मैं कहीं गई हुई थी, तो मुझे मेरी किसी अपनी एक साथी, उन्होंने पर्स दिया और वो उस पर वही मोहर लगी हुई थी, पर्स भी अच्छा था, मेरे जरूरत का भी था, लेकिन मुझे ये शर्म मारे जा रही थी कि किसी ने मेरे हाथ में ये देख लिया और उसने ऑडियो में इसी का नाम सुना होगा तो मुझे सूट नहीं करता। मैंने दिल में, पर्स तो अच्छा है सब है ठीक है, पर मुझे इट डजेंट सूट्स मी. तो मैं अपनी एक और मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो मैंने वो उनको गिफ्ट में दिया और मैंने उनको साथ कह के दिया कि मुझे लगता है ये मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं इतना महंगा पर्स पकड़ूं, तो ये आप लीजिए, मुझे यही ठीक है. वो खुश हो गई, उसकी बेटी ने हाय ये पर्स है उनको. तो मैं समझाना ये जरिए कि इट डजेंट सूट. अब मैं नहीं कहती कि हो सकता है, और कई दफा मैंने कोई पर्स पकड़ा भी हो आपके बड़ा महंगा, मुझे पता ही नहीं होगा ये महंगा है. अपने अंदर फकीरी लाए, गुर्बत लाए, फिर देखिए जो बारिश होगी. अल्लाह के बंदो बस करो, अल्लाह के अल्लाह ताला बस कर इलाही. वो कहते हैं ना, वो एक बंदा था तो उसके बेटे थे, तो वो हर बेटे के नाम के साथ इलाही लिखता था, शुकूर इलाही, बाद इलाही, फजल इलाही, फला. ये भी वैसे फजल इलाही है जिनकी बुक पढ़ रहे हैं, किस्सा मुख्तसर. तो उसका माशाला 11वां बेटा हो गया, तो उसने किसी से मशवरा मांगा कि इसका क्या नाम रखूँ, तो उसने कहा बस कर इलाही है. तो दुनिया से आप जान तो छुड़ाएं, दिल से निकाल दें इसको, आपको इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, कूड़ा करकट लगेगी आपको. सिर्फ आप इस वजह से कि आप जाया करने का हुक्म नहीं, इस्लाम ये नहीं चाहता, और किसी का तोहफा वट एवर, अदरवाइज आपको तलब नहीं होती. क्योंकि और आखिरत क्या गई है, आप परांदा नाम रख लें या पराडा रख लें, किसी को क्या फर्क पड़ता है, आप उसका नाम कोई कुछ भी कर ले. जो लोगों के हाथ में नाम होता है लोगों को वही अच्छा लगता है, राइट? ऐसे ही है ना. तो पाकिस्तान में तो हर नाम की पैरोडी भी होती है माशाल्लाह से. तो किस्सा मुख्तसर यह कि अपने दिल से दुनिया को निकाल दें, आपको कभी कर्ज लेने ही नहीं पड़ेंगे. आज के दौर का वो बादशाह कि जिसके सर पे एक पैनी का कर्ज नहीं है, ना लेना है ना देना, सीधी सी बात है. चलो आज मरे कल दूसरा दिन, कौन किसको हिसाब लंबे चौड़े पड़े हैं. तो लिहाजा कर्ज अगर लिया है तो उसको वापस करना होगा. फिर अगली बात है कि अदायगी कर्ज के फजाइल के, यानी आपने कर्ज लिया, ले सकते, देखिए फिर यहाँ नोट कीजिए, इवन नबी सल्लम ने लिए कर्ज, हो सकता है किसी को भी लेना पड़े. और कुछ नहीं होता, आप बाहर बैठे हैं, आपको पाकिस्तान में किसी से कुछ लेन देन देना है, क्या अपने भाई को नहीं कहेंगे कि भाई वहां 1 लाख दे दो मैं तुम्हें दे दूंगी? तो ये भी तो कर्ज है ना. कर्ज लेने वाला हमेशा मुफलिस नहीं होता, जरूरतमंद भी तो वक्ती तो हो सकता है ना. सफर में थे, चलो जी जरूरत पड़ गई, ये दे दीजिए, कर दिया, दे दीजिए, ये वो क्या खत्म हो गई बात, ऐसा भी हो जाता है. लेकिन ये नियत रखेंगे वापस करना है. बात होती है हम तो भूल ही गए थे, याद ही नहीं रहा, अच्छा ये हमने देना था, हमने लेना था. तो अब इसको पढ़ते हुए जरूर सोने, अगर कर्ज अदा किया है तो उसका हमें क्या फायदा मिलेगा. इस्लाम में सिर्फ अदायगी कर्ज का हुक्म देने पर ही नहीं रोका गया, इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि कर्ज की वापसी का इरादा करने, यानी ये नोट कीजिए, इरादा करें, यानी उमदगी से अदा करना, ये नहीं कि ली अच्छी चीज थी तो अब खराब सी दे दो. अगर आपने वाकई किसी से चीनी ली थी तो फिर वाइट दें, सस्ती कीमत की ला के ना दें, या वही बकौल किसी के कि जमा हुआ घी लिया था तो पिघला कर ना दें. अच्छी नीयत करें कि इंशाल्लाह वापस अच्छी तरह से करूंगी. तो इस बात की जोरदार और मौसर तरगीब दी गई. तो पहला फ़ायदा, अदायगी कर्ज के सच्चे इरादे की बरक़ात. नबी सल्लम की कर्ज के सच्चे इरादे की बयान करदा बरक़ात में 4 हैं. नंबर 1, अल्लाह तआला का कर्ज को अदा करवा दें. देखिए कौन मदद करता है कर्ज लेकर वापस करने वाले की, नियत करने वाले की, अल्लाह सुबहान. तो अल्लाह जब किसी का कर्ज अदा करवा दे तो उसमें कोई मुश्किल होगी? नहीं होगी. इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की. आपने फरमाया, मन अखज़ अमवालन नासी युरीदु अदाअहा अदल्लाहु अन्हु. जो शख्स लोगों के माल बतौर कर्ज अदा करने की नीयत से लेता है तो अल्लाह ताला इससे अदा करवा देते हैं. ये नोट कीजिएगा और आप खुद देख लें, रेपिटेशन बन जाती है. आपके अपने खानदान में, कारोबारों में जो मर्द काम करते हैं उनको पता है, कुछ लोगों को देते हुए आपको यकीन होता है ये वापस करेंगे और वो कर देते हैं. वजह क्या है कि उनकी नीयत अच्छी होती है, मैंने कर्ज अदा करना है, अल्लाह ताला अदा करवाते हैं. हदीस की शर्ह में हाफिज इब्ने हजर तहरीर करते हैं, कहते हैं इस हदीस में कर्ज के लिए नीयत की दुरुस्तगी की तरगीब और इसकी खराबी से डराया गया. यानी नीयत दुरुस्त रखो, और नीयत खराब करोगे तो फिर समझ लो कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी. इमाम इब्ने माजा की हजरत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा के हवाले से रिवायत है कि हदीस में बयान किया कि मैंने अपने नबी और खलील को फरमाते हुए सुना. सुभान अल्लाह, कैसा प्यारा अंदाज़ था. नबी और खलील क्या थी अल्लाह के नबी की? मैमूना बीवी थी, जौजा थी, लेकिन शौहर के लिए कितने खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करती हैं. क्या रिवायत है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि वो कर्ज ले और अल्लाह ताला को इसके मुतल्लिक मालूम हो कि वो इसकी अदायगी का इरादा रखता है, मगर अल्लाह ताला दुनिया में इससे अदा करवा देते हैं. तो फिर आपको आज समझ आएगा कि कुछ लोग वाकई फिर हैंड टू माउथ होने के बावजूद कर्ज का आना पाई कैसे चुका देते हैं. ऐसे आपके लोगों में भी कुछ लोग वाकई दे देते हैं और वो फिर असबाब खुद ही बनते हैं. वो कहते हैं ये सोचा इधर हुआ, उधर सोचा उधर हुआ. और कई लोग मुझे सुनाते हैं जैसे ये स्टूडेंट्स अक्सर इसको किस जिम्मन में सुना देते हैं कि जब उनको पढ़ के एक पता चलता है कि इस घर में सूद भी है और कर्ज भी है, दो कबाख्ते बन जाती हैं, तो अब तो हमें इसको या तो बेचना है या जो भी जान छुड़ानी है। तो वो किसी ने अपना भी सुना है कि ऐसा एक नीयत की बस कि जो भी होगा हमने इस घर को बेचना है। वो चीज़ पाकिस्तान में जो कभी कई सालों की कोई डेड ब्लॉक प्रॉपर्टी थी, कोई जायदाद के झगड़े थे वो थे, कहती है एकदम अचानक हम ये बातें कर रहे हैं कि हमने इस घर को यहाँ जो है पे ऑफ करना है, नहीं तो छोड़ देना है, व्हाटसो एवर करना है। तो कहती हैं कि वहाँ से पाकिस्तान से फ़ोन आ गया, वो आपका जो प्लॉट नहीं था बिका वो बिक रहा है और उसके पैसे आप बताइए कहाँ डाले। उसी महीने में उसको पे ऑफ कर दिया। अल्लाह मदद करता है, बल्कि आप टोटका बना लें इसको, अल्लाह मैंने गलत चीज को जान छुड़ानी है, तू मेरे लिए मदद कर। आप कपड़े बेचें, जूते बेचें, अपना जेवर बेचें, आप पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बेचें, जहां आपके पास एसेट्स हैं। आप देखिए कि आप कहेंगे ना मैंने 3 माह के अंदर इस घर को पे ऑफ करना है, तो 3 माह में ही अल्लाह कराएगा। और आप कहते नहीं मैंने इसे 1 महीने से ऊपर नहीं डाल, छोड़ के निकल के बाहर बैठ जाना है, अल्लाह आपको बाहर नहीं बैठने देगा। ये मेरा ईमान है, आपका ये ईमान होगा फिर। ठीक है, तो कभी भी अपने ऊपर कोई बोझ को लाद के खड़े नहीं रहना चाहिए, उससे हिम्मत टूटती है। फिर सच्चे इरादे पर तौफीक इलाही मयसर आने का वाकया, ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराइल के शख्स के बारे में बयान फरमाया। इमाम बुखारी ने हजरत अबू हुरैरा के हवाले से रसूलुल्लाह से रिवायत नकल की, नबी सल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र किया कि इसने बनी इसराइल के 1,000 दीनार कर्ज मांगे। इस कर्ज देने वाले ने कहा गवाहों को बुला लो ताकि मैंने पर गवाह बना लूं। ये शर्त है ना, कर्ज की शरायत जो पीछे लिखाई थी कि कर्ज पे गवाह बनाइए। खैर, इस कर्ज तलब करने वाले ने जवाब दिया गवाह तो अल्लाह ताला ही काफी है, यानी और कोई था ही नहीं, तो कहा अल्लाह ताला को बना लेते हैं। इसने कहा अच्छा तो मेरे पास कोई जामिन लाओ। इसने जवाब दिया जामिन भी अल्लाह ही काफी है, यानी दो लोग बैठे दरिया के किनारे डील कर रहे हैं, वहां कोई बंदा ना बंदा बशर। तो कहा कुछ भी नहीं, जामिन भी अल्लाह, यानी जामिन कौन होता है कि अगर मैं ना दे सकूं तो वो देगा, और गवाह कौन है जो हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई कर दे। खैर, इसने कहा तुमने सच कहा और एक वक्त मुकर्रर के लिए इसको कर्ज दे दिया। ये शख्स कर्ज लेकर दरियाई सफर पर रवाना हुआ और अपनी जरूरत पूरी की, फिर किसी सवारी की तलाश करता रहा कि इस पर सवार होकर मुकर्रर मुद्दत पर इस यानी कर्ज देने वाले के पास पहुंच जाए, लेकिन कोई सवारी ना मिली। आखिर इसने एक लकड़ी ली, इसमें सुराख करके इसमें 1,000 दीनार, दीनार को तो सोने के सिक्के होते थे ना, तो वो भीगते नहीं थे, और स्टैंप लेके अंदर से उसको खोखला किया, एक किस्म का एक बॉक्स बन गया, होल करके उसमें उसने सारे वो कॉइन सारे डाल दिए और दूसरी तरफ से उसको किसी भी तरह लकड़ी लगा के बंद कर दिया, और अपनी तरफ से एक खत इसके नाम रख दिया, इसको बंद किया और दरिया पर ले आया और फिर कहने लगा। देखिए अब ये है ईमान के सौदे, ए अल्लाह बेश जानते हैं कि मैंने फलां शख्स से 1,000 दीनार कर्ज मांगे, इसने मुझसे जामिन तलब किया तो मैंने कहा जामिन अल्लाह ही काफी हैं, तो वो इस पर राजी हो गया। इसने मुझसे गवाह तलब किया, मैंने कहा गवाह तो अल्लाह ताला ही काफी हैं, तो वो इस पर भी राजी हो गया। और बिलाशुबा मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिल जाए जिसके जरिए मैं इसका कर्ज इस तक पहुंचा दूं, लेकिन मुझे इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई, इसलिए मैं इसको आप ही के सपुर्द करता हूं। बस इसने इस रकम वाली लकड़ी को दरिया में बहा दिया, वो इस दरिया में थी। फिर वो शख्स यानी मकरूज वापस आ गया, लेकिन वो इस दौरान भी इस कर्ज देने वाले के शहर की तरफ जाने की सवारी की तलाश में रहा। दूसरी तरफ कर्ज देने वाला शख्स भी इस इंतजार में था कि शायद कोई सवारी इसकी रकम लेकर आ जाए। इसने वो देखी जिसमें रकम थी, वो इसको घर में बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की खातिर ले आया। जब इसने इसको चीरा तो इसमें से रकम मिली और चिट्ठी मिली। फिर मकरूज और इसके पास 1,000 दीनार ले आया और कहने लगा वल्लाही मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई सवारी मिले ताकि मैं तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर आऊं, लेकिन मुझे इस सवारी से पहले कोई सवारी ना मिली जिस पर मैं आज आया हूं। इस कर्ज देने वाले ने कहा क्या तुमने मुझे कुछ भेजा था? इसने जवाब दिया मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं कि मैं जिस सवारी पर तुम्हारी तरफ आया हूं इससे पहले मुझे तुम्हारी तरफ आने वाली कोई सवारी नहीं मिली। इसने कहा बिलाशुबा जो चीज तुमने लकड़ी में रख कर भेज दी थी इसको अल्लाह ने तुम्हारी तरफ से अदा करवा दिया, अब हिदायत के साथ 1,000 दीनार लेकर वापस लौट जाओ। जी ये सच्चा वाक्य, सही बुखारी का वाक्य, और आप कुरान में ये आल इमरान की आयत में आप लोग पढ़ेंगे भी के कुछ लोग तो इतने हैं कि 1 दीनार पर भी अपना ईमान बेच लेते हैं, और अगर कुछ ऐसे कि 1 किंतार भी उनको दे दो कर्ज में तो वो फिर उसको युद्ध ही लाइक, तो उसमें ये वाकया आता है। अब आप देखिए इसमें कितनी अनयूजल चीज़ें हैं आपके लिए मेरे लिए, कि जब अल्लाह को गवाह बना लिया था फिर वो देना भी चाह रहा था, पैसे ले भी आया, होता तो चला जाता वापस, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई सेल फोन नहीं था, अब किधर पहुंच गए, अब किधर है, टैक्स कर रहे होते, सिग्नल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसने अल्लाह की नजरों में सच्चा होने के लिए कि अल्लाह तू गवाह था, तू जान था, तो उसको दरिया में डाल दिया। हमारी नजर में देखे तो उसने पैसे डबो दिए, उसको क्या पता ये लकड़ी किधर जाएगी, उसी तरफ वेट कर रहा है कि अच्छा अभी आएगा, आज का वादा हुआ था, अभी वादा हो गया था। अच्छा भाई नहीं आ सका, कि जी लोग पैसे ले लेते हैं तो देते नहीं है वापस। अच्छा आया था सुबह से, पैसे नहीं मिले, चलो घर में कोई ईंधन के लिए लकड़ी ले जाऊं। उस दौर में लोग क्या करते थे कि लकड़ियां एक दरिया के किनारे से बहाते थे, पानी में बहती बहती वो दूसरी तरफ आ जाती थी। कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो पानी में रहती हैं तो वो मजबूत हो जाती हैं, या उनमें फिर धुआं कम होता है या व्हाटएवर, कुछ इसी किस्म की कैफियत थी। वो लकड़ी उधर से तैर जाके इस किनारे पर खड़ी हो गई। अब इसने कहा कि घर ले जाओ, तो जूं ही वो उस तने को पकड़ा, घर जाके चीरा तो उसमें से वो सब आ गया। आप कहते हैं ये लकड़ी तो कोई और भी ले सकता था, राइट, वहीं पड़ी रहती, गली जाती। वो जामिन था, जिसका अल्लाह पे यकीन होगा ना, अल्लाह उसको फी होगा। मैं यत्तकिल्लाह यजल लहू मखरजा, आपका मेरा इस दुनिया में जो हमारा मामला है ना, ये हमारी यकीन बेस्ड है। हजरत इब्राहिम आग में गिरे थे, यकीन की बुनियाद पर बताए। मैं और आप आज आग में गिरेंगे, कभी नहीं बचेंगे, हम तो शेकी होंगे, देखते हैं क्या होता है। हम कहते हैं नहीं, कहाँ होगा, तो फिर नहीं होगा, नहीं होता। आज आप साइंस से पूछ लीजिए, साइकाट्रिस्टों से पूछ लीजिए, वो कहते हैं यस। आप जस्ट यस कहते हैं तो आपके इर्द गिर्द एनर्जी फैल जाती है यस की, आप नो कहते हैं तो नो की एनर्जी फैल जाती है, राइट, लोग कहते हैं ना। लेकिन रियलिटी में बात क्या है, अल्लाह के साथ आपका जैसा गुमान होगा वैसे अल्लाह करेगा। अनाइंद जन्ने अब्दी भी, हदीसे कुदसी है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। मेरा बंदा कहता है मेरे साथ अल्लाह बहुत अच्छा करेगा तो मैं अच्छा करता हूँ, मेरा बंदा कहता है मेरे साथ अल्लाह ने कभी अच्छा ही नहीं किया तो जाओ फिर नहीं करूँगा। तो अल्लाह के साथ अपना गुमान सीधा रखें, और इंशाल्लाह आप देखिए कि फिर आपके साथ भी इसी किस्म की बातें होंगी। कभी जिंदगी में आपके भी ऐसा हुआ कि आपने किसी का कुछ लेन देन करना था और फिर अनयूजल बात हो गई? ऐसे में कभी सोचा नहीं है मुझे लगता है, तो आज से सोचना शुरू कर दें, ठीक है।